अभ्यानतिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्येव च वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाहि कृष्णाय कृष्ण तद्भक्ताय नमो तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणं सप्रथमे हमार परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्रुत सरस्वत भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। तत्पश्चात शिक्षा गुरु श्रीशील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूं। आज आप लोग आज के अपनारा कृष्ण कंकाली और भूतेश्वर महादेव
पोत्राकुंड
आदिकेशव और जन्मस्थान और फिर महाविद्या में এই স্থানে গিয়েছি। তার মধ্যে কৃষ্ণ জন্মস্থলী সেখানে বসুদেব দেবকী জেলখানাতে ছিলেন আর সেইখানেতে কৃষ্ণ বাসুদেব কৃষ্ণ নারায়ণ তত্ত্ব সেইখানে জন্মগ্রহণ করেন। আমি বলেন যে আমি আমাকে নিয়ে গোকুলে দিয়া তখন বাসুদেব মহারাজ তাকে গোকুলে নিয়ে যান নন্দ ভবনে। সেখানে কৃষ্ণ পূর্ণরূপেতে এবং তৎপশ্চাৎ যোগ মায়া ওখানে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব মহারাজ যোগমায়াকে নিয়ে আসেন আর তার অলক্ষিত ভাবেতে দ্বিভিজ কৃষ্ণ চতুর্ভুজ কৃষ্ণকে আত্মসাত করেন। এইসব কথা বিস্তৃত রূপেতে বর্ণন হয়েছে। যখন বসুদেব মহারাজ যোগমায়াকে নিয়ে আসেন তখন সকালের দিকে রাত্রি সময় কংস জোর করে দেবকী কোল থেকে যোগ মায়াকে টেনে নে আর পাথরের উপরে মারবে পটকে। তখন দেবকী বহু অন্যায় বিনয় করছে, আর পুত্রগুলি মারা গিয়েছে কিছু বলেন, কিন্তু এনার বেলা যে এই কন্যাটা আমার নয়, বিশেষ করে আদলা বদলি হয়েছে, তো ওই পুত্রকে যতদিন না পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মেয়েকেও আমরা মেয়েকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, কারণ ছেলেকে দিয়ে মেয়েকে আনা হয়েছে, এখন মেয়েকে দিয়ে তারপরে ছেলে আনা। তখন আছাড় দিয়েছে আর হাত থেকে বেরিয়ে অষ্টভুজা দুর্গা হয়েছেন, বললেন যে রে কংস, তোমাকে মারবার জন্য অন্যত্র পায়দা হয়ে গেছে, তুমি আমাকে কি মারবে। তারপরে ওই কঙ্কালী যেখানে আজকে আপনারা গিয়েছিলেন সেইখানে তখন থেকে পূজিত হচ্ছে। আর কৃষ্ণ বলেছিলেন যোগ মায়াকে, তুমি সর্বত্র পূজিত হবে, কোথাও দুর্গা কোথাও বিন্ধ্যাচল পাশিনী কোথাও কিছু বহু জায়গাতে পূজিত, আর লোকের মনোবাঞ্ছিত লৌকিক পদার্থগুলি। তখন থেকে এই দেবী পূজা চারিদিক হতে আরম্ভ, সকলের লৌকিক কামনা বাসন। কঙ্কালির পরেতে ভূতেশ্বর মহাদেব, ভূত মানে প্রাণীগণের ঈশ্বর, তিনি উন্মুখগণকে ভক্তি প্রদান করেন, আর বিমুখগণকে তাহার মোহিনী মায়া দূর করে, দুর্গের মধ্যে বন্ধ করে দেয়, এই জন্য তিনি দুর্গা। সব দর্শন করেও যদি রঙ্গেশ্বর ভূতেশ্বর গোকর্ণেশ্বর পিপলেশ্বর দর্শন না হয় তাহলে পরিক্রমা পূর্ণ হয় না, আপনারা এইসবগুলি দর্শন করছেন। আবার মহাবিদ্যা যেখানে ওইখানে আশপাশে তখন মথুরা নগরী, মথুরা নগরী এদিকে ছিল না, এদিকে শুধু ময়দান ছিল, রঙ্গেশ্বরের মন্দির ছিল, আর এইখানে উচ্চভূমিতে কংসকে বসবার জন্য সিংহাসন উপরে করা হয়েছে। আর কৃষ্ণ এইখানে কংসকে ধরে টেনে আর তাহার উপরেতে লাপ দিয়েছেন, সেটি মারা গিয়েছে। তো ওইখানেতে আশপাশেতে মথুরা ছিল, আর ওখানে সরস্বতী নদী প্রবাহিত ছিলেন, যমুনাতে তিনি মিলতেন। একদিন একাদশীতে, একাদশীতে না কখন, ওখানে এসেছিলেন নন্দ বাবা অম্বিকাবন ওকে বলে, আর ওইখানে বিরাট অজগর নন্দ বাবা পায়ে ধরেছে আর গিলতে আরম্ভ করেছে, সব লোক অনেক চেষ্টা করছে ছাড়ে নাই। তারপরে কৃষ্ণকে ডাকেছে, কৃষ্ণ এসেই পায়ে ছুঁয়ে দিবাতে বাস মুক্ত হয়ে আতার বিদ্যা ধরে শরীর ধারণ করেছে। এইসব লীলার স্থান হয়তো আমাদের তীর্থ মহারাজ পরিক্রমার সময় এইসব কথা বলেছেন। আবার কালকে আমরা এখানে আদি কৃষ্ণ বারাত, তারপরে শ্বেত বারাত দর্শন করব, তারপরে অনন্ত পদ্মনাভ, দীর্ঘ বিষ্ণু, মথুরা দেবী, পদ্মনাথকে দর্শন, এইসবগুলি দর্শন করব। বিশেষ করে আদি কৃষ্ণ বারা দুটি বারা, শ্বেত বারা কৃষ্ণ বারা, কৃষ্ণ বারা হচ্ছেন আদি বারা, বারাহরূপ ধারণ করে আর তিনি বেদকে প্রথমে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন, পৃথিবীকে হিরণ্যাক্ষ চুরি করে নিয়ে লুকিয়ে দিয়েছে পাতালে। বারাদের পৃথিবীকে উপর রেখে নিয়ে আসছেন, আর ওইখানেতে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু ভ্রাতা, তার সঙ্গে বিরাট যুদ্ধ হল আরম্ভ। বারাদেব তাকে ছেড়ে দিয়ে উপর পৃথিবীকে ধারাতলের উপরে তে রাখেন, আর তারপরে তার সঙ্গে যুদ্ধতে বহু বছরের পর ভাগ। তারপরে কোনো সময় বেদকে, বেদ জ্ঞানকে চুরি করে নিয়েছিল সব, আর এই নিচে গিয়ে জলের ভিতরে চুরি করেছিল বেদকে। আবার শুক্ল বারা বারারূপ ধারণ করে আর বেদগুলিকে উদ্ধার করে। তারপরে কৃষ্ণ যখন মথুরাতে প্রবেশ করেন বৃন্দাবন থেকে আসবার সময়, সেই সময় ছেলেরা জিজ্ঞাসা করল যে কংস তো মহাবলবান, আর তুমি ছোট বালক কিরকম মারবে? তখন কৃষ্ণ বিরাট রূপ তাকে দেখিয়েছিল, বড় আকার রূপ, চতুর্ভুজ রূপ, চতুর্ভুজ রূপ, খুব বিরাট লম্বা চওড়া দেখিয়েছেন। তখন সখাগণের বিশ্বাস হল, হ্যাঁ মারতে পারবে আমার সব, কিন্তু আশ্চর্য ভাব আসে এই তো প্রয়োজন, অর্জুন জয়সা নেই আর। তারপরে মথুরা দেবী আর এইসব পুজি দর্শন হবে আপনারা সব শুনবেন। আজকে কি বলা হবে, আচ্ছা ট্রান্সলেশন,
today by the mercy of Sri Guru and Vaishnavas, we performed our Mathura Parikrama on the day of Ekadasi. So today we went to Kankali Mahadev, Bhuteshwar Mahadev, Kankali Devi, Bhuteshwar Mahadev, Mahadev, Janmaskali, then we completed our Mathura Parikrama. So there, Kankali or Kankali Devi, we heard how Krishna appeared here in Mathura in a four-armed form. Then he asked to Vasudeva Maharaj, take me to Gokul. So there, Vasudeva Maharaj took this Mathuraj Krishna to Gokul, where at the same time Yasoda Maya had given birth to Vrajananda and Krishna and to Yoga Maya. Vasudeva Maharaj, keeping his Krishna there, returned in the dead of night with the daughter of Yasoda Mata, Yoga Maya. When Kamsa in the dead of night heard the crying of the child, he came down. And Devaki Mata tried in many ways to save the daughter. Oh, we should protect her. She is a daughter, she cannot kill you. But Kamsa was very cruel, he could not hear. Therefore he took the baby and went to bash her on the stone. But Kamakali Devi put from his hands and said, "Foolish fellow, how can you kill me?" That time she took Asabuj Rup, when she took a form with eight hands. Your killer, the person who will kill you, has taken birth somewhere else. Therefore there Krishna has offered some prayers to Yoga Maya. Oh, the foolish persons who are bewildered by your external energy will worship you in many ways and in your many forms, and you will fulfill the material desires of all of them. Then we came to Pujeshwar Mahadev. Without the darshan of and the mercy of Mahadev, especially the four forms of Mahadev which guard Mathura Mandal, Pujeshwar, we have had darshan today, Rangeshwar Jatiya, Pribaleshwar Mahadev on the bank of Yamuna, and Gokhaneshwar. Without the darshan of those four forms of Mahadev, our parikram cannot be successful. Therefore, Bhut Ishwar. Bhut means Jivatma. He is the controller of all the Jivatmas in this world. Therefore, for those who are inclined towards the service of Krishna, Bhuteshwar Mahadev offers them the benediction of bhakti. For those who are against the service of Krishna, Bhuteshwar Mahadev cheats them by binding them with Maya. Today we went also to Mahavidapith. That time, there are two raised parts of Mathura. Here is Kamsatila, and also there, behind there is Mahavidapith. There is also, at that time, the town of Mathura was modestly centered around there also. Here in Kamsatila is a very raised, even now it's a little bit raised, and Kamsa was sitting on there as he prepared the wrestling arena to finish Krishna and Balaram. Krishna jumped up there and threw Kamsa down and killed him. But another raised place is there where we went today, Mahavidapith. Now, at that time the Saraswati River was flowing there, but now it has become covered. That place is called Ambikavan also. In the time of Krishna, on the day of Akadasi, all the Brijbasis were performing their Akadasi Vrat. In the middle of the night, one huge python came and took Nanda Baba by the feet and tried to eat him. The Brijbasis tried in many ways to get the snake to release Nanda Baba by beating him with sticks and fire, but the snake would not release Nanda Baba until Krishna touched that snake on the head with his lotus feet. Then that snake assumed his original form as a Vidyadhara and went back to his abode. Today we visited all those pastime places. Tomorrow we go to see the two forms of Varahadev, Krishna Varaha and Swet Varaha. But the original form of Varaha is Krishna Varaha. Varahadev is a form in a blackish complexion. Tomorrow we'll hear how Hiranyaksha stole the earth and hid her at the bottom. That time, Varahadev assumed a form that came to save the earth. He took the earth on his tusk and kept her very nicely on the surface of the ocean. Then a huge battle took place between Hiranyaksha and this Adi Krishna Varaha. Sometimes Hiranyaksha steals the earth and sometimes he steals the Vedas. But in both times, Varahadev comes to save. We also visited Dirga Vishnu. Dirga Vishnu means a very large form. When Krishna was coming here to Mathura, the cowboys were thinking, they had some doubt. Oh Krishna, Kamsa is very huge. How are you going to kill Krishna? Therefore, in order to dispel the doubts of the cowboys, Krishna took a very large, four-armed form, big and fat. That time the cowboys laughed. Yes, now we have providence. You can kill Krishna. But this comes up. But despite seeing the huge form of Krishna and the form of Vishnu, the cowboys never became afraid of Krishna, the mood of awe and reverence, like Arjuna did.
যে হরি কথা বলে জন্ম সম্বন্ধে এরকম হতে কৃষ্ণ ওখানে গেলে
اس لیے بھگوان شری کرشن یہاں آ کر کے پرکٹ ہوتے ہیں. جبکہ متھرا میں کمس کاراگار میں دیو کی وسودیو جیل کھانے گئے ہیں تب وہاں پر بھگوان شری کرشن جو کہ ہمس بھاگ کے ساتھ یعنی پورن اور پورنتر پورنتم بھگوان کے تین پرکاش ہیں. ان پرکاشوں میں جو کہ پورن پرکاش ہیں اس پرکاش کے ساتھ ہمس بھاگ کے ساتھ بھگوان شری کرشن یہاں پر اوترت ہوئے. جو کہ دیوکی اور وسدیو کے سامنے بھگوان شری کرشن شنکھ چکر گدا پدم لے کر کے چترج روپ میں پرکٹ ہوئے. سب وسمیوں پھل ولوچنوں بھری وسدیو مہاراج بھگوان شری کرشن کو دیکھ کر کے بڑے وسمت ہو اٹھے. بڑی بڑی نیتروں سے دیکھنے لگے وسدیو مہاراج وسفارت رہتے بھگوان شری کرشن کے دیکھتے لاجے. دیوکی کے یہاں پر کرشن نے جنم نہیں لیا جو کہ 16 برس کے بالک جیسے پرکٹ ہوئی اور شنکھ چکر گدا پدم ہاتھ میں لیے ہوئے. جو کہ مستک پر کریٹ ہے کانوں میں کنڈل ہے گلے میں کستر منی ہاتھ میں باری بند اور کنکر آدی سے سوشوبھت چرنوں میں نوپور ہے گلے میں برمالا ہے. اس پرکار پیتامبر پہنے ہوئے ساندر پیوردتم بھگم جو نوین بادل کے سمان بھگوان شری کرشن چندر یہاں پرکٹ ہوئے. اس سمے بڑے وسمت ہو کر کے دیوتی وسدیو نے ہاتھ جوڑ کر استوتی پرارتھنا کی. بولے گی پیتو اسی بھگوان پرش پرگتے پر دیوتی وسدیو ہاتھ جوڑے پرارتھنا کر لیں कि हे भगवान हे परम पुरुष प्रकृति अपि हे परम ब्रह्म हे स्वयं भगवान आपने आज के हमारे सामने प्रकट हुए. आज आप हमारे सामने विदित हुए हैं प्रकट हुए हैं. हम सभी कंस से डरे हुए हैं. आपके पूर्वज 6 बालकों को कंस ने मार डाला है इसलिए हम उनसे डरते हैं. और अभी अभी कंस आपके ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ के आएगा और मार डालेगा इसलिए हम डरते हैं. कहीं आपके ऊपर प्रहार न करें इसलिए हे भगवान आप भक्तों के कामधाम भक्तों के हृदय संपन्न आप अपने स्वरूप को छिपा लें अपने को गोपन करें. लीजिए कि आपने गोपन करण तहन भगवान श्री कृष्ण की बोलते हैं. श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि एतद् वाम दर्शितम रूपम प्राय जन्म स्मरणाय मे हे पितर हे मातर मैंने जो अपना स्वरूप दर्शन कराया यह पहले जन्म का स्मरण दिलाने के लिए. आपने पहले जन्म में सृष्टि और सुतपा के रूप में बहुत काल तक आराधना की है तो उस समय मैं प्रसन्न हो करके आपको वरदान देना चाहा. उस समय आपने ये वर मांगा कि तुम्हारे जैसे हमें बालक हो. हमने देखा कि हमारे जैसे न तो हमारे समान कोई है और ना ही मुझसे बढ़कर के कोई होता है. असमूर्ण तत्व हूं जो कि मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है. मेरे बराबरी करने वाला भी मेरे समान कोई नहीं है. हमार समान क्यों है ना हमार से बड़ा क्यों है ना भाई हमें निजे के ही दान कर ला. मैंने अपने को दान कर दिया तब से मैं अपने को पुत्र रूप में दान किया कि आप ही के पुत्र बनकर मैं आया. पहले जन्म में मैंने पृष्ठी गर्व अवतार के रूप में अवतरित हुआ था. दूसरे जन्म में जब आप असव और अदिति होकर के आए हैं तब उस समय मैं पावनदेव होकर के आया. इस समय आप लोग देवकी और वसुदेव बनकर आए हैं तो आप हमारे पिता माता हैं. मैं आप ही का पुत्र स्वयं भगवान हूँ परात्पर सत्तर हूँ. मैं आपका पुत्र बनकर के आया हूँ. आप कम से डरे नहीं. हमारे हाथ में तो चक्र है ना. अभी आएगा तो हम चक्र से मार डालेंगे परंतु आप इतना क्यों डर रहे हैं. پھر بھی بے تو ڈر کے ہمارے کانپ رہے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر ایشوریا اور مادھوری جو دونوں برابر روپ میں شامل ہو گیا ہے. اس لیے متھرا بھومی جو ہیں ایشوریا اور مادھوری جو دونوں سمان سمان روپ میں, اور برج بھومی جو ہے پریم کی بھومی مادھوری کی بھومی, وہاں کیول وشدھ پریم مادھوری, جہاں پر بھگوان شری کرشن کا کوئی بھی ایشوریا اپنے سروپ کو اپنا ایشوریا پرکٹ نہیں کر پائے, اور کرنے جائے تو کوئی مانے ہی نہیں. یشودا میا نے دو بار کرشن کا وراٹ روپ دیکھ لیا, منہ میں بھی سروپ کو دیکھ لی جو برہمانڈ دیکھا, پرنتو یشودا میا نے مانا نہیں. اور یہاں جیسے کرشن نے چترمج روپ دھارن کیا اور پرکٹ ہوئے تو دیوکی وسودیو جیسے مارے گھبرائے, ان کو بالک روپ میں گودی میں اٹھا کر کے لال پیار کریں گے, یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. ایشوریا بھاو کے کارن سمبھرم سنکوچ بدھی آ رہی ہے. بھکتی میں دو پرکار کی بھکتی کہی جاتی ہے, ایک ایشوریا سمبھرم مولا بھکتی اور ایک وشرم بھاگمے بھکتی اور ایک سمبھرم بھاگم. تو سمبھرم بھاو جہاں پر ہوتا ہے سمبھرم سے سنکوچ, اور وہاں پریم شیتل ہو جاتا ہے, اس لیے اتنا پیار نہیں ہو پاتا ہے. دیوکی کے ہردے میں ممتا ہوتے ہوئے بھی سمبھرم سنکوچ کے کارن شیتل ہو جاتا ہے, گھٹ جاتا ہے. پرنتو ماتا یشودا کے ہردے میں اجاد واتسل پریم ایشوریا کو دیکھ کر کے ایشوریا کو مانتے ہی نہیں. پریم کی سمندر میں وہ ایک چنکے کے سمان ایشوریا, اس لیے برج بھومی مادھوری کی بھومی ہوئی اور متھرا بھومی ایشوریا اور مادھوری سمانانتر روپ میں گھومتا پھرتا ہے. اس لیے دیوکی وسودیو ہاتھ جوڑ کر کے پرارتھنا کیے کانپنے لگے, بھگوان کرشن کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا پتر ہوں, جنم جنم میں پتر بن کر کے آیا, آپ مجھے گودی میں لے کر کے دودھ پلا لیں, باسل پریم کو دکھائیں, باسل سنیہ ممتا نہیں آ پا رہا ہے سودھم سنکٹ کے کارن. بھگوان کرشن نے کہا جب آپ ڈرے ہوئے ہیں تو اچھا ہے, تو آپ مجھے گوکل میں رکھ کر کے آئیے اور میرے بدلے میں یہ کنیا کو اٹھا کر کے لائے. یہ بات کہہ رہے ہیں. اس کے پشچات جب کہ ہریونش میں, ہاں ہریونش میں ہی کہا ہے کہ پراگت شیشو بہور بہ دیکھتے دیکھتے بھگوان شری کرشن چھوٹے سے بالک بن گئے, اپنے سوروپ کو چھپا لیا, بولے کہ مجھے گوکل میں رکھ کر گیا ہے. جنم کا رہسیہ تو اس پرکار ہے, برہم جامل کے انوسار گربھ کالے تو اسمپورنے اشٹمے ماسے کے استریوں دیوکی یشودا سشوبا کے سمم تھا. جس سمے دیوکی نے کرشن کو جنم دیا, جانے کرشن پرکٹ ہوئے اسی سمے, ٹھیک ایک ہی سمے میں اسی سمے میں یشودا ماتا نے بھی کرشن کو جنم دیا. وہاں پر گربھ سے جنم ہوئے جو کہ ناڑی چھیدن ہوا ہے. یعنی گربھ سے جنم نہیں لیتے تو ناڑی کاٹنے کا نال کاٹنے کا پرسنگ کہاں سے آ جاتا. اس لیے بنا, اور یہاں تو چترمج روپ میں پرکٹ ہوئے ہیں, اس کے پشچات پرارتھنا استوتی اتیادی ہونے کے پشچات چھوٹے سے بالک بنے, اور بننے کے پشچات وسودیو مہاراج انہیں دیکھ کر کے جبکہ گئے ہیں. آج ہم لوگ وسودیو گھاٹ بھی درشن کرتے ہوئے آئے ہیں, جہاں وسودیو مہاراج جی نے جمنا میں پار کیا بھری ہوئی جمنا, وہاں جگ مہاراج جی سیالی کے روپ میں آئے, آ کر کے پانی کے اوپر چلنے لگے. اسے دیکھ کر کے وسودیو مہاراج جی بھی پانی پر چلنے لگ گئے, چلتے چلتے پار کیا اور اس پر گوکل میں جا کر کے اپنے بالک کو رکھ کر کے آئے. परंतु उनको समझने नहीं दिया, जो कि श्रीमद् भागवत में यह हमारे आचार्य पादों ने ऐसा वर्णन किया है कि जिस समय जमुना पार हो रहे थे तब उस समय तीन भाग पार हो गए किनारे आने वाले हैं, तो इतने में जबकि जमुना जी का पानी बढ़ने लग गया। जमुना जी के पानी बढ़ने से आप वसुदेव महाराज जी हाथ ऊपर उठाने लगे, कृष्ण को ऊपर उठाने लगे, परंतु इतने में एक छलांग लगाई जमुना में गिर पड़े, और जमुना में गिरते ही आप कृष्ण को टोटलने लग गए। तो उस समय दोनों वर्ग के आचार्य लोगों ने दोनों तरह की बातें करते रहते हैं। जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग कहते हैं कि वहां तो मथुरा नाथ से कृष्ण वहीं पर अंतर्हित हो गए, और वहां से जो यशोदानंदन है वहां आकर के वसुदेव महाराज जी के हाथ में वहां से चल उनको ले, और कोई कहते हैं जैसे श्री बल्लभ कुली के लोग कहा करते हैं उनके संप्रदाय के आचार्य लोग कि जमुना जी को बड़ी अभिलाषा है कृष्ण के चरण छूने की, इसलिए कृष्ण ने उनकी अभिलाषा को जान करके और छलांग लगा दी कि वहीं पर जमुना में एक बार जमुना ने उनको स्पर्श कर लिया। परंतु वहां वात्सल्य और श्रृंगार दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, यह तो संभव है। इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने कहा कि नहीं, असल में ये रहस्य है जो कि मथुरा नाथ श्री कृष्ण वहीं रहे गए और ब्रजविलास श्री कृष्ण वहां से प्रकट होकर के चले, जो कि वसुदेव महाराज जी को वहां समझने नहीं दिया कि वहां पर जो जमत संतान हुए हैं एक बालक और बालिका के रूप में यशोदा मैया को जोग महाराज जी ने सुला दी। कृष्ण ने पहले ही आदेश दिया था, गच्छ देवी ब्रजम भद्र, हे कल्याणी हे देवी तुम्हारे कल्याण हो, तुम ब्रज में जा, मैं अनुजा बन करके जन्म ग्रहण करना। और उससे पहले जन्म के समय यशोदा मैया को इस प्रकार से नींद में सुला देना है कि उन्हें मेरा जन्म रहस्य भी पता नहीं लगना चाहिए, दूसरी ओर किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए मेरा जन्म रहस्य क्या रहेगा, और जितनी भी लीलाएं होगी उसमें संशयिता बनेगी। इस प्रकार जो माया जी को भेजा, जो अनुजा छोटी बहन बन करके जन्म ग्रहण की, इसलिए इधर तो कंस ने क्या किया, दिन रात समय गिनते चले गए कि एक एक दिन गिनते जा रहे हैं कि एक महीना दो महीना पिछले महीना ऐसे करते करते अब कंस सोच रहे हैं कि 10 महीना होने पर बालक का जन्म होगा। परंतु भगवान कृष्ण ने ऐसे चतुराली की 8वें महीना में जो कि गर्भ काम पूरा भी नहीं हुआ उस समय प्रकट हुआ और कंस को ठग लिया, 8वें महीना में कृष्ण जन्म ले ली और यहां तो प्रकट हुए वहां पर जन्म। इस प्रकार मथुरा भूमि को देखा जाता है जो कि ऐश्वर्य और माधुर्य बराबरी में देखा जाता है। द्वारका में जो भगवान की लीला है वहां पर ऐश्वर्य प्रधान है, माधुर्य नीचे दब जाता है, और ब्रजभूमि जो है माधुर्य की भूमि है, जहां पर प्रेम माधुर्य इतना ऊंचा उठा हुआ है कि ऐश्वर्य तिनके के समान नीचे दबा हुआ है। यद्यपि कहा है लक्ष्मी शत सहस्र संभ्रम सेव्य मान कि लक्ष्मी जी ब्रजभूमि की कैसी सेवा करती है कि सैकड़ों प्रकार से हजारों प्रकार से लक्ष्मी जी अपनी सारी संपदा ब्रजभूमि में उड़ दी है, जो कि वैकुंठ की संपदा क्या है, चिंतामणि और कल्प वृक्ष। परंतु यहाँ के ब्रज के ये धूल कण चिंतामणि है, और वो चिंतामणिया जो चिंतामणि है वो गोपियों के पैरों के नुपुर में पैजेंट के काम में आता है, और कोई काम ही नहीं है इतनी चिंतामणि। तो इस तरह से हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं कि भूमि चिंतामणि गणमणि तो मृदम, और जितने भी वृक्ष लताए हैं सब कल्प वृक्ष कल्प लताए हैं, जो कृष्णानंदनी श्री राधा जी के भाव के द्वारा विभूषित है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि भागवत में جب سے کرشن کا جنم ہوا ہے تب سے رما لکشمی جی کی مہ پیڑاستلی بن گئی ہیں. اس پرکار مادھوریہ ولاس لیلا پروشوتم بھگوان شری کرشن نے برج میں جا کر کے لیلائیں کی. آج متھرا میں 11 برس 8 مہینے تک برج میں لیلائیں کی. اس کے پشچات متھرا کی لیلائیں ہوئی جہاں کی انہوں نے کمس کا ودھ کیا, دیوکی بسدیو کو جیل خانے سے مکت کیا, مہاراج اگر سین کو بندی سے مکت کرا کر انہیں راج مکٹ پہنایا. اور اسی متھرا پوری میں ہی جراسندھ میں 23 اکشرنی سینا لگ کر کے آکرمن کیا تب ان سبھی سیناؤں کو پراجت کیے. 18 بار ہی ان سبھی سیناؤں کو پراجت کیے. 3 کروڑ جبل سینا لے کر کے کال جبل بھی آیا اور انہیں مجمند مہاراج کے دوارا سب کو بھسمی بھوت کرا دیے. اس پرکار بھگوان شری کرشن نے متھرا پوری پر بھی یہاں متھرا پوری میں بھی لیلائیں کرتے ہوئے اسر سنہار آدی بھوہار ہرن آدی لیلائیں کی اور ایشوریہ بھاو کو پرکٹ کیا. اس کے پشچات سمست جنوشیوں کو ساتھ میں اٹھا کر کے دوارکا میں بسا دی اور دوارکا کی لیلا رہے ہیں. آگے چل کر کے بہت ساری کتھائیں ہوں گی, میں اپنا وقت یہیں رکھتا ہوں.
So you can you translate in brief.
So briefly, Prithvati Maharaj is talking about the appearance of Sri Krishna and Mathura Mata. So, all the death, the earth burdened by the weight of so many asuras, the earth planet approached Lord Brahma for relief. So Lord Brahma, headed by all the demigods, went to Prabhupada Vaikuntha and offered prayers to the feet of Kiridaksa Vishnu. Lord Vishnu, a voice came to the heart of Lord Brahma. Soon my Prabhu, the Supreme Lord Sri Krishna, Swayam Bhagavan, he will appear here in Mathura Mandal. Therefore, all you devas should take birth here in the Yadu month, in the Yadu dynasty, to assist the pastimes of Sri Krishna. So, you know everything already. The 6 sons of Devaki were killed by Kamsa Maharaj. The 7th son, in Bhagavatam, described to be a miscarriage. But that was actually Sri Sangharsan Ram transferring himself to the womb of Rahini in Vrindavan. And finally came the appearance of the 8th son of Devaki, Krishna himself. 10 months he stayed in the womb of Devaki. And there he appeared in the prison house of Kamsa Maharaj. All the demigods came to that place today and were offering prayers to Krishna in the womb. Satya, Ratam, Satya, Paramtri, Satyam. They offered many, many prayers. So when the time came for the appearance of Sri Krishna, he appeared in a four-armed form. On his head he had a helmet, a nice Vajanti mala of lotuses around his neck. On his body he was wearing many armors, bracelets. He was held by Pitambara. On his feet he had Nupur. He appeared as a 16-year-old youth, ever fresh, more attractive than millions of cupids, with a very, very dark complexion. In that four-armed form he held Sankachakra Garapatma, lotus, Sudarshan disc, conch shell and club. That time, very interesting thing. In Dwarka there is the complete predominance of the mood of opulence, and the mood of sweetness is quite covered in Dwarka. But here in Mathura, the mood of sweetness and the mood of opulence is 50-50, in equal proportion. Therefore the prayers of Devaki and Vasudev reflect that. They pray many things. You are the Supreme Purusham Pratikiparam. You are the Supreme Lord who is beyond material nature. Out of your mercy you have appeared here. They offered many, many prayers. But then alongside the prayers of opulence, they said, but we are also afraid because Kamsa has killed the six previous sons. Therefore, if you stay here, it's very dangerous for you. We are afraid like this. So their prayers reflect the mood of opulence and the mood of sweetness, both. Therefore they prayed, O Bhagavan, please conceal your form. Therefore, Haribans described that the Supreme Lord came in perfect tissue, like an ordinary baby form. Then Bhagavan ordered, O Vasudev Maharaj, take me there to Gokul. So Vasudev Maharaj, he took baby Krishna on his head and crossed the Yamuna here. Maharaj, I could not catch everything. So there are some conflicting arguments. What happened? One jackal was going across first to show Vasudev Maharaj the water here is very shallow. That jackal was Santarsam. Therefore, Yogamaya Devi. So some people say the water of Yamuna flows to touch the feet of Krishna. But Puttabhati Maharaj saying in this there is not complete conception because Kalindi, she serves in the mood of Madhuri Ras. And there Vasudev Maharaj, he serves in the mood of Vatsalya Ras. Therefore there may be some conflict. Therefore other Swamis have described the Goswamis described that Krishna disappeared in the Yamuna there.
उन्होंने अपना पैर थोड़ा सा नीचे लटका दिया और जमुना की उस पैर को छू करके कृष्ण ने जंप नहीं किया पैर लटका दिया
So Krishna previously ordered Yogamaya to take birth there in Vrindavan as my smaller sister. So when Vasudev Maharaj went there, Yashoda could not understand she had given birth to Shukla.
वहाँ पर एक विचार बतलाया. वहीं से मथुरेश कृष्णा वासुदेव नंदन returned back to Mathura and Brajesh Yashoda Nandan Nanda Nandan वहीं से आकर के वहां पर गए
फ्रॉम देयर इन द मिडल ऑफ यमुना मथुरेश कृष्ण रिटर्न फ्रॉम देयर बैक टू मथुरा एंड वृंदावन एंड फ्रॉम फेम एंड दैट
क्यों
आते हैं दैट टाइम मथुरेश कृष्ण रिटर्न बैक टू मथुरा Mathura and Vrindavan Krishna was there, manifested from that time. So comes Maharaj, he had been waiting a long time. He had been completely thinking of Krishna in the mood of fear. Actually comes as one of the first persons to know that Krishna would appear in this world. So since before the appearance of Krishna, he had been too much thinking of Krishna in the mood of fear. Bhagavatam describes, he used to see the form of Krishna, Bhagavan Vishnu, with the Sudarshan chakra in his hand, everywhere. There for 10 months, first the seventh child, he had waited so many years. Then when he heard that the child was crying, he came down. Vasudev Maharaj had returned with Yogamaya on his head, and the rest of the Leela that is manifested here. So the main point being, here in Mathura, there is some mood of opulence mixed with the mood of Madhurya. There is some feeling of sankoshva, means some feeling of shyness, some feeling of restriction, a little bit lacking of mamata, some hesitation in the free flowing of emotion, because the mood of opulence is present here in Mathura. But in the mood in Vrindavan, there is that mood of opulence is completely cut off by the mood of sweetness. Therefore the good bhaktis have no sankoshva. No feeling of hesitation towards Krishna. Therefore, two types of bhakti, Samrat bhakti and Samrat Bhava bhakti and Vishram Bhava bhakti. Samrat Bhava means with hesitation, with some fear, and Vishram Bhava means no hesitation, complete seva and mamata.
Can he speak something on Krishna Janma?
वो
Because we're hearing some of the intimate details, some of the secret elements of the pastimes of Krishna, but in Bhagavad Gita, and for the purposes of explaining this pastime and this lila to the people in general, for the wider audience we're attempting to introduce to this path of bhakti, they must first come to understand Krishna's description of his own birth and purposeful appearance from Bhagavad Gita. And in the fourth chapter, Krishna explains very clearly his general mission. But Haritraya Sadhana Vinashaya Chadushvaka Gala Samstavana Sambhavami Udayate. I'd like to know, out of everybody here, how many of you are reading any part of the Gita and preaching to people about Krishna from this particular verse? Is anybody here preaching? Does anybody here sell books or preach? Huh? Raise your hands. I know Dhamma Maharaj is. Some of the boys here. Anybody? Okay, one thing. We are here.
Becomes a mystery. And the of Krishna's appearance, as explained in Chaitanya Charitamrita, was to demonstrate to the entire world the beauty, the attraction, the unparalleled sweetness of the pastimes of Krishna in his Braj Leela, in his full original form as Shyama Sundar, Vrajendranandana, Nandanandana, Jashodanandana. And Mahaprabhu came to reveal that and to offer us this same mode of Braj prayer. But Mahaprabhu exhibited the pastime of preaching, of teaching this to everyone, of attempting to liberate the souls. And he gave that order to his most confidential servants, headed by Nityananda Prabhu, to take that task up. And our Sampradaya has taken this mood on as its heart and soul. And our principal, our great acharyas, have all manifested this manasrishta, this intense inner mood and desire to preach and spread this understanding out of compassion, because they are developing with the mood of Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, I was going to speak some about Krishna Leela, but Mahaprabhu and Krishna Leela are the same. And this is my good education.
गीता में कहा गया है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं शिजाम परित्रणाय विनाशाय च दुष्कृताम् बट यू शुड नो, आप लोगों को जानना चाहिए, ये काम तो महाविष्णु भी कर सकते थे. दैट
जॉब
इट कैन बी डन बाई विष्णु महाविष्णु. सो दिस इज नॉट रियल कॉज, यू शुड नो. इसलिए भगवान के अवतार का कृष्ण का कारण ये नहीं, ये तो विष्णु के द्वारा भी करा सकते थे. चूंकि उसी समय में अवतार का भी भूभार का भी आया, किंतु कृष्ण ने असुरों का संहार नहीं किया, जरासंध को नहीं मारा या मरवाया, कालजवन को वो नहीं कराया, ये सब काम महाविष्णु के द्वारा ही संभव हो सकता था. कृष्ण ने जो कंस को मारा, कृष्ण ने नहीं मारा, उनके भीतर में जो विष्णु तत्व है उसने मारा. अंडरस्टैंड, कृष्ण किल्ड रावण, अघासुर, बकासुर एंड अदर्स. कृष्ण डज नॉट टच देम, उनको उनके अंदर में जो विष्णु थे उन्होंने मारा. और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, रस का आस्वादन किया, 12 रसों का आस्वादन, दास्य सख्य वात्सल्य मधु रस का. विशेष करके रासलीला सर्वोत्तम लीला, लीलाओं में शिरोमणि, उसके लिए जगत में प्रकट हुए. अष्टकाली लीला गोलोक वृंदावन में, उसको जगत में प्रकाश करने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्ण अवतरित हुए. इसलिए असुर संहार इत्यादि कृष्ण का वास्तविक नहीं, बल्कि वो बाह्य कारण इत्यादि सबके रूप में ग्रहण करो. इसको स्पष्ट करने के लिए बतलाया, नारद जी व्यास जी के पास आए, सब कुछ उन्होंने लिखा, वेदों का विभाग किया, पुराणों को प्रकाश किया, महाभारत को प्रकाश किया, उसमें गीता उपनिषद भी आया, किंतु मन प्रसन्न नहीं। और नारद जी ने पूछा, तुमने सब कुछ किया, मन खिन्न क्यों? वाई वार अनसेटिस्फाइड। तो उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं जानता हूं, आप गुरु हैं, आप ही जानते हैं, आप तो वैद्य हैं। उन्होंने कहा, तुमने धर्म अर्थ काम का जैसा वर्णन किया है मोक्ष का, वैसे कृष्ण ही स्वयं भगवान है, ये नहीं। जो छोटा मैया जिसका आर पार नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, भीतर बाहर नहीं है, उसको बांध दिया प्रेम से, कई वर्णन नहीं किया तुमने। गोपियों के चरणों में गिर गया, अपने मुकुट और बंसी रख दी, न पारे हम निर्मध्य से, ये किया नहीं। इन श्रीलाओं को भक्ति योग के द्वारा समाधि में देख करके उसको लिखो, तब तुम्हारा चित्त प्रसन्न होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंत में कहा गया है, देवकी जन्म बाधो जदुपति जयति जन निवासो देवकी जन्म बाधो जदुपर परिषद धर्म श्रीचर ब्रिज नग्न सुस्मित सी मुखे न प्रतिकूल बलिता वर्धयन कामदेव। कृष्ण का अवतार का कारण ये है और उतरने का, वर्धयन कामदेव, गोपी के अंदर में निर्मल प्रेम को प्रकट करके जगत को शिक्षा देने के लिए कृष्ण। देवकी जन्म बाद, देवकी के यहां जन्म लिया ये बाद है, यशोदा जी का गर्भ से वो पूर्ण रूप से निकले और अपने बाहुओं से भीम और अर्जुन इत्यादि के द्वारा असुरों का संहार किया, सखाओं के साथ में गोचारण के लिए गए और गोपियों के काम को वर्धन किया। इसमें सारा संपूर्ण श्रीमद् भागवत इसी श्लोक में आ जाता है, समस्त होल श्रीमद् भागवत इज इन दिस वन श्लोक। सुखदेव गोस्वामी हैज टोल्ड लाइक दिस गौर प्रमाण।
रौद्र भयानक आदि रस उसने स्वयं आस्वादन किए ना, विष्णु तत्व ने आस्वादन किए, राक्षसों को
मारा
है कृष्ण ने, स्वयं कृष्ण ने किया।
गुरु महाराज सेइंग इट इज वर्स इज स्पोकन बाय कृष्ण इन द गीता स्मृतनाय सकलम निमित्तार दृष्टिगम धर्म सत्कार सत्या प्रियम गए गए और कृष्ण ने स्वयं से अर्जुन और अर्जुन आई कम इन एवरी एज प्रियम गए गए I come in every age to protect religion and to destroy religion, to protect the sadhus. For this reason I descend. Guru Maharaj is giving nice points. So these are only external reasons for Krishna's appearance. You should not consider these to be the main things. In Sri Chaitanya-charitamrita describes that actually Krishna never killed Kamsa. Krishna never killed Putana, Adasura, Bhakasura. Vishnu inside Krishna He performs the works of killing demons, protecting religion, protecting the sadhus. All these external activities are the work of Mahavishnu, Yuga Avatar. These are not the duties of the original personality of Godhead, Brijana Nandan, Shyam Sundar. This understanding is given clearly in the Srimad Bhagavatam. The Sri Vyasadeva, despite compiling all the Vedas, including Bhagavad Gita, in the Mahabharata, He was still not satisfied until Guru Narad Muni came. Then he said, Oh Vyas, you have done so much, but you are not satisfied. Why? Have you described how Krishna has no inside, no outside, no beginning, no middle or end, but your Yashoda mother has bound him out of her pen? Have you described that in your Mahabharata? No, Gurudev, I have not described. Have you described how Krishna is completely controlled by the frame of the gopis? He puts his flute and his peacock feather at the feet of the gopis and prays not party home in the video something. Have you described that in your Mahabharata? No, Gurudev, I haven't described anything. Then Narada Muni blessed him and his samadhi, bhakti yoga and manasa samyak pranaka amale. In his samadhi trance, then Vyasadeva saw the pastimes of Krishna. Therefore, Krishna has appeared in this world primarily to taste lust and to teach into this world what is prema bhakti. But these external things like establishing religion, this is done by Mahavishnu inside Krishna. Therefore, the whole, like putting the ocean inside a bottle, Sri Sukadeva Goswami has given the whole Srimad Bhagavatam in one verse. Jayati Janani Vaso Janma Jayati Janma Bhagavatam. Therefore, the idea that Krishna has appeared in the son of Devaki and Mathura, this is a Bhagavatam. This means, Sukadeva Goswami said, this is only a theory, because Krishna really has appeared in Vrindavan. He comes here with his two arms like Arjuna and Bhimsen to destroy the demons. He resides in all the hearts of his devotees, especially the Vrindavasis, and he manifests his prema-lila by hearing this, then Cupid can be defeated. So these are the real reasons of Krishna's incarnation, to taste this prema-rasa.
One very sad news that the one of the prominent disciple of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Sripad Bhakti Sarup Damodar Maharaj, he has left his body by attack of bomb in Manipur. He was injured, and just tomorrow and yesterday,
he was okay, but yesterday he left his body.
Yesterday he left his body. Now his body is bring. They will bring to Radhakund, and they will give samadhi. He was really a Vaishnava. In his home, I have seen Gaur Govinda Maharaj. And secondly, they were real Vaishnava. They used to follow the principles of their Guru in real sense. They never admitted what now his cone is
propagating.
And he was my bosom friend. He was very humble, very humble, very humble. And he has told his disciples, you can associate with Narayan Maharaj, he is your Vaishnava. So,
last year he came to you in Govardhan last year in Kartik.
Uh-huh. In Kartik, he met me in Govardhan last year. In Navadvip also. Whenever I used to go to Navadvip, he used to meet me. And helping me, he also used to help me. So we have lost one very good devotee. I pray Krishna, Mahaprabhu, that he should have blessing on him, that his pure bhakti should come in his home, wherever he is. He is not dead, his soul never will die. So Krishna should be merciful, sprinkle his mercy. Gold Raman.
Hare Krishna. Uddeshwar Mahadev cheats them by binding them with Maya. Today we went also to Mahavidapit. That time there are two raised parts of Mathura. Here is Kamsatila, and also there, behind there is Mahavidapit. There is also, at that time, the town of Mathura was mostly centered around there also. Here in Kamsatila is a very raised, even now it's a little bit raised, and Kamsa was sitting on there as he prepared the wrestling arena to finish Krishna and Balaram. Krishna jumped up there and threw Kamsa down and killed him. But another raised place is there where we went today, Mahavidapit. Now, at that time the Saraswati River was flowing there, but now it has become covered. That place is called Ambikavan also. In the time of Krishna, on the day of Akadasi, all the Brijvasis were performing their Vrat there, their Akadasi Vrat. In the middle of the night, one huge python came and took Nanda Baba by the feet and tried to eat him. The Brijvasis tried in many ways to get the snake to release Nanda Baba by beating him with sticks and fire, but the snake would not release Nanda Baba until Krishna touched that snake on the head with his lotus feet. Then that snake assumed his original form as a Vidyadhara and went back to his abode. Today we visited all those pastime places. Tomorrow we go to see the two forms of Varahadev, Krishna Varaha and Swet Varaha. But the original form of Varaha is Krishna Varaha, Varahadev in a form of, in a blackish complexion. Tomorrow we'll hear how Hiranyaksha stole the earth and hid her at the bottom, past Talatal. That time, Varahadev assumed a form and came to save the earth. He took the earth on his tusk and kept her very nicely on the surface of the ocean. Then a huge battle took place between Hiranyaksha and his Adi Krishna Varaha. Sometimes Hiranyaksha steals the earth and sometimes he steals the Vedas. But in both times, Varahadev comes to save. We also visited Dirga Vishnu. Dirga Vishnu means a very large form. When Krishna was coming here to Mathura, the cowboys were thinking, they had some doubt. Oh, Krishna, Kamsa is very huge. How are you going to kill Krishna? Therefore, in order to dispel the doubts of the cowboys, Krishna took a very large, four-armed form, big and fat. That time the cowboys laughed. Yes, now we have confidence. You can kill Krishna. But this comes up. But despite seeing the huge form of Krishna and the form of Vishnu, the cowboys never became afraid of Krishna in the mood of awe and reverence like Arjuna did.
It's a Hari Katha one of Janma Sambandha. Kirakamhavate, Krishna Khanya Gele.
विशेषकर मत्स्य के तु जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञानीन जैनवा
तत्सार भूतम तदस्य मथुरा सार निगत्यते। बोले कि संसार में पृथ्वी धन्य है और पृथ्वी पर वृंदावन धाम जहाँ है वो ब्रजभूमि धन्य है और उसमें ये मथुरा जो कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समस्त संसार को मथित करते हैं और उसका सार स्वरूप है यत्र भगवान श्री हरि भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि भगवान श्री हरि नित्य का इस मथुरा मंडल में मथुरा में नित्य काल विराजमान है। इसलिए भगवान श्री हरि का निवास स्थान अपना निज धाम है, जैसे गुरुधाम है वैसे ब्रजधाम है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, एक सबसे ऊपर होता है और एक भूमि में स्थित है। इसलिए भूमि में स्थित होने के कारण भौम वृंदावन या भौम ब्रज कहा जाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं इस धराधाम में अवतरित होते हैं। जब यहाँ आते हैं तब यहाँ पर उनकी लीलाएं होती हैं। अतः उनकी लीलाएं तरह तरह के विचित्र प्रकार के होने के कारण अतिव ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण हो जाता है, जो कि दूसरों के लिए सबके लिए अतिव चमत्कार पूर्ण लगता है और वही सबके लिए मनोहारी बन जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ आकर के प्रकट होते हैं। जबकि मथुरा में कंस कारागार में देवकी वसुदेव देव खाने में है, तब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो कि अंश सह अंश भागे अंश भाग के साथ यानी पूर्ण और पूर्णतर पूर्णतम भगवान के तीन प्रकाश हैं। उन प्रकाशों में जो कि पूर्ण प्रकाश हैं, उस प्रकाश के साथ अंश भाग के साथ भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अवतरित हुए, जो कि देवकी और वसुदेव के सामने भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पर्व लेकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। सब विस्मयो फुल्ल विलोचनो हरि। वसुदेव महाराज भगवान श्री कृष्ण को देख करके बड़े विस्मित हो उठे, बड़े बड़े नेत्रों से देखने लगे। वसुदेव महाराज विस्फारित नेत्र भगवान श्री कृष्ण के देखते लगे। देवकी के यहाँ पर कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, जो कि 16 वर्ष के बालक जैसे प्रकट हुई और शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए, जो कि मस्तक पर किरीट है, कानों में कुंडल है, गले में कस्तुर मणि, हाथ में बाजूबंद और कंकण आदि से सुशोभित, चरणों में नूपुर है, गले में बनवाला है, इस प्रकार पीताम्बर पहने हुए सांद्र पयोदर्शन भगम, जो नवीन बादल के समान भगवान श्री कृष्ण चंद्र यहाँ प्रकट हुए। उस समय बड़े विस्मित होकर के देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना की। बोले कि विदितो असि भगवान पुरुष प्रकटे पर। देवकी वसुदेव हाथ जोड़े प्रार्थना बोले कि हे भगवान, हे परम पुरुष प्रकृति अपि, हे परम ब्रह्म, हे स्वयं भगवान, आपने आज के हमारे सामने प्रकट हुए, आज आप हमारे सामने विदित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। हम सभी कंस से डरे हुए हैं, आपके पूर्व 6 बालकों को कंस ने मार डाला है, इसलिए हम उनसे डरते हैं और अभी अभी कंस आपके ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ के आएगा और मार डालेगा, इसलिए हम डरते हैं, कहीं आपके ऊपर प्रहार न करें। इसलिए हे भगवान, आप भक्तों के प्राणधार, भक्तों के हृदय संपन्न, आप अपने स्वरूप को छिपा लें, अपने को गोपन करें, निजे के अपनी गोपन करें। तखन भगवान श्री कृष्ण की बोलते हैं, श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि एतद्वां दर्शितं रूपं प्रायजन्म स्मरणाय मे। हे पिता, हे माता, मैंने जो अपना स्वरूप दर्शन कराया, यह पहले जन्म का स्मरण दिलाने के लिए। आपने पहले जन्म में सृष्टि और सुतुका के रूप में बहुत काल तक आराधना की है, तो उस समय मैं प्रसन्न हो करके आपको वरदान देना चाहा। उस समय आपने ये वर मांगा कि तुम्हारे जैसे हमें बालक हो। हमने देखा कि हमारे जैसे न तो हमारे समान कोई है और ना ही उससे बढ़कर के कोई होता है। असमूर्ण तत्व हूं जो कि मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है, मेरे बराबरी करने वाला भी मेरे समान कोई नहीं है। हमारे समान क्यों है ना, हमारे थके बड़ा क्यों है ना। ताकि हमें निजे के ही दान कर ला, मैंने अपने को दान कर दिया। तब से मैं अपने को पुत्र रूप में दान किया कि आप ही के पुत्र बनकर मैं आया। पहले जन्म में मैंने पृष्ठी गर्भ अवतार के रूप में अवतरित हुआ था। दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति होकर के आए हैं, तब उस समय मैं पांडव होकर के आया। इस समय आप लोग देवकी और वसुदेव बनकर आए हैं, तो आप हमारे पितामह का हैं। मैं आप ही का पुत्र स्वयं भगवान हूँ, परात्पर तत्व हूँ। मैं आपका पुत्र बनकर के आया हूँ। आप कंस से डरे नहीं, हमारे हाथ में तो चक्र है ना। अभी आएगा तो हम चक्र से मार डालेंगे, परंतु आप इतना क्यों डर रहे हैं? फिर भी बेतौर डर के मारे कांप रहे हैं। क्यों? उनके अंदर ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों बराबर रूप में शामिल हो गया है। इसलिए मथुरा भूमि जो है, ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों समान समान रूप में, और ब्रजभूमि जो है प्रेम की भूमि, माधुर्य की भूमि, वहां केवल विशुद्ध प्रेम माधुर्य, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का कोई भी ऐश्वर्य अपने स्वरूप को अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर पाए, और कहने जाए तो कोई माने ही नहीं। यशोदा मैया ने दो बार कृष्ण का विराट रूप देख लिया, मुंह में भी विश्व रूप को देख ली, जो ब्रह्मांड देखा, परंतु यशोदा मैया ने माना नहीं। और यहाँ जैसे कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किया और प्रकट हुए, तो देवकी वसुदेव डर के मारे घबराए, उनको बालक रूप में गोदी में उठा करके लाड़ प्यार करेंगे, ये भी नहीं हो पा रहा है। ऐश्वर्य भाव के कारण संभ्रम संकोच बुद्धि आ गई। भक्ति में दो प्रकार की भक्ति कही जाती है, एक ऐश्वर्य संभ्रम मूला भक्ति और एक विश्रम्भ भावमय भक्ति और एक संभ्रम भाव। तो संभ्रम भाव जहां पर होता है संभ्रम से संकोच, और वहां प्रेम शिथिल हो जाता है, इसलिए उतना प्यार नहीं हो पाता है। देवकी के हृदय में ममता होते हुए भी संभ्रम संकोच के कारण शिथिल हो जाता है, घट जाता है। परंतु माता यशोदा के हृदय में अगाध वात्सल्य प्रेम ऐश्वर्य को देख करके ऐश्वर्य को मानते ही नहीं, प्रेम की समुद्र में वह एक तिनके के समान ऐश्वर्य, इसलिए ब्रज भूमि माधुर्य की भूमि हुई और मथुरा भूमि ऐश्वर्य और माधुर्य समानांतर रूप में घूमता फिरता है। इसलिए देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए, कांपने लगे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आपका पुत्र हूँ, जन्म जन्म में पुत्र बन करके आया, आप मुझे गोदी में लेकर के दूध पिला ले, वात्सल्य प्रेम को दिखाए, वात्सल्य स्नेह ममता नहीं आ पा रहे संभ्रम संकोच के कारण। भगवान कृष्ण ने कहा, जब आप डरे हुए हैं तो अच्छा है, तो आप मुझे गोकुल में रख करके आइए और मेरे बदले में ये कन्या को उठा करके लाए। ये बात कह रहे हैं। इसके पश्चात जबकि हरिवंश में हरिवंश में ही कहा है कि प्राकृत शिशुरु पगुर वर्ग देखते देखते भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक बन गए, अपने स्वरूप को छिपा लिया, बोले कि मुझे गोकुल में रख कर गया है। जन्म का रहस्य तो इस प्रकार है, ब्रह्म जामल के अनुसार गर्भ काले तु असंपूर्णे अष्टमे मासे ते स्त्रियं देवकी च यशोदा च सुषुवाते समं तथा। जिस समय देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया जाने कृष्ण प्रकट हुए, उसी समय ठीक एक ही समय में उसी समय में यशोदा माता ने भी कृष्ण को जन्म दिया। वहां पर गर्भ से जन्म हुए जो कि नाड़ी छेदन हुआ है। यदि गर्भ से जन्म नहीं लेते तो नाड़ी काटने का नाल काटने का प्रसंग कहां से आ जाता। इसलिए बिना और यहाँ तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, इसके पश्चात प्रार्थना स्तुति इत्यादि होने के पश्चात छोटे से बालक बने और बनने के पश्चात वसुदेव महाराज उन्हें देख करके जबकि गए हैं। आज हम लोग वसुदेव घाट भी दर्शन करते हुए आए हैं, जहाँ वसुदेव महाराज जी ने यमुना में पार किया भरी हुई यमुना। वहाँ जब माँ जी सियाली के रूप में आई, आकर के पानी के ऊपर चलने लगी, उसे देख करके वसुदेव महाराज जी भी पानी पर चलने लग गए। चलते चलते पार किया और उस पर गोकुल में जा करके अपने बालक को रख करके आए, परंतु उनको समझने नहीं दिया। जो कि श्रीमद् भागवत में यह हमारे आचार्य पादों ने ऐसा वर्णन किया है कि जिस समय यमुना पार हो रहे थे तब तो उस समय तीन भाग पार हो गए किनारे आने वाले हैं, तो इतने में जबकि यमुना जी का पानी बढ़ने लग गया। यमुना जी के पानी बढ़ने से आप वसुदेव महाराज जी हाथ ऊपर उठाने लगे, कृष्ण को ऊपर उठाने लगे, परंतु इतने में एक छलांग लगाई यमुना में गिर पड़े और यमुना में गिरते ही अब कृष्ण को टोटलने लग गए। तो उस समय दोनों वर्ग के आचार्य लोगों ने दोनों तरह की बातें करते रहते हैं। जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग कहते हैं कि वहां तो मथुरा नाथ से कृष्ण वहीं पर अंतर्हित हो गए और वहां से जो यशोदा नंदन है वहां आकर के वसुदेव महाराज जी के हाथ में वहां से चले उनको ले। और कोई कहते हैं जैसे श्री बल्लभपुरी के लोग कहा करते हैं उनके संप्रदाय के आचार्य लोग कि यमुना जी को बड़ी अभिलाषा है कृष्ण के चरण छूने की, इसलिए कृष्ण ने उनकी अभिलाषा को जान करके और छलांग लगा दी कि वहीं पर यमुना में एक बार यमुना ने उनको स्पर्श कर लिया। परंतु वहां वात्सल्य और श्रृंगार दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, यह तो संभव है। इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने कहा कि नहीं, असल में ये रहस्य है जो कि मथुरा नाथ श्री कृष्ण वही रहे गए और ब्रजविलास श्री कृष्ण वहां से प्रकट होकर के चले, जो कि वसुदेव महाराज जी को वहां समझने नहीं दिया कि वहां पर जो जमज संतान हुए हैं एक बालक और बालिका के रूप में यशोदा मैया को जोग माया जी ने सुला दी। कृष्ण ने पहले ही आदेश दिया था, गच्छ देवी ब्रजम भद्र, हे कल्याणी हे देवी तुम्हारा कल्याण हो, तुम ब्रज में जा, मैं अनुजा बन करके जन्म ग्रहण करना। और उससे पहले जन्म के समय यशोदा मैया को इस प्रकार से नींद में सुला देना है कि उन्हें मेरा जन्म रहस्य भी पता नहीं लगना चाहिए, दूसरी ओर किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए मेरा जन्म रहस्य क्या रहेगा। और जितनी भी लीलाएं होंगी उसमें सहायता बनेगी। इस प्रकार जो माया जी को भेजा, जो अनुजा छोटी बहन बन करके जन्म ग्रहण की है। इसलिए इधर तो कंस ने क्या किया, दिन रात समय गिनते चले गए कि एक एक दिन गिनते जा रहे हैं कि एक महीना दो महीना तीसरे महीना ऐसे करते करते अब कंस सोच रहे हैं कि 10 महीना होने पर बालक का जन्म होगा। परंतु भगवान कृष्ण ने ऐसे चतुराई की 8वें महीना में जो कि गर्भ का पूरा भी नहीं हुआ उस समय प्रकट हुआ और कंस को ठग लिया। आठवें महीना में कृष्ण जन्म लेगी और यहाँ तो प्रकट हुए वहां पर जन्म। इस प्रकार मथुरा भूमि को देखा जाता है जो कि ऐश्वर्य और माधुर्य बराबरी में देखा जाता है। द्वारका में जो भगवान की लीला है वहां पर ऐश्वर्य प्रधान है, माधुर्य नीचे दब जाता है। और ब्रजभूमि जो है माधुर्य की भूमि है, जहाँ पर प्रेम माधुर्य इतना ऊंचा उठा हुआ है कि ऐश्वर्य तिनके के समान नीचे दबा हुआ है। यद्यपि कहा है लक्ष्मी शत सहस्र संभ्रम सेव्य मानस कि लक्ष्मी जी ब्रजभूमि की जैसी सेवा करती है कि सैकड़ों प्रकार से हजारों प्रकार से लक्ष्मी जी अपनी सारी संपदा ब्रजभूमि में उड़ल दी है, जो कि वैकुंठ की संपदा क्या है, चिंतामणि और कल्प वृक्ष। परंतु यहाँ के ब्रज के ये धूल कण चिंतामणि है और वो चिंतामणिया जो चिंतामणि है वो गोपियों के पैरों के नुपुर में पैजेब के काम में आता है और कोई काम ही नहीं है, इतनी चिंतामणि। तो इस तरह से हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं कि भूमि चिंतामणि गणमयी तो मृतम, और जितने भी वृक्ष लताएं हैं सब कल्प वृक्ष कल्प लताएं हैं, जो वृषभान नंदिनी श्री राधा जी के भाव के द्वारा विभूषित है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि भागवत में रमा किरण अभुन्न को, जब से कृष्ण का जन्म हुआ है तब से रमा लक्ष्मी जी की मुह पीड़ा स्थली बन गई है। इस प्रकार माधुर्य विलासी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में जाकर के लीलाएं की और मथुरा में 11 वर्ष 8 महीने तक ब्रज में लीलाएं की। उसके पश्चात मथुरा की लीलाएं हुई जहाँ की उन्होंने कंस का वध किया, देवकी वसुदेव को जेल खाने से मुक्त किया, महाराज उग्रसेन को बंदी से मुक्त कराकर उन्हें राजमुकुट पहनाया और इसी मथुरापुरी में ही जरासंध में 23 एक एक बार में 23 अक्षरणी सेना लेकर के आक्रमण किया। तो उन सभी सेनाओं को पराजित किए 18 बार में, तो 18 बार ही उन सभी सेनाओं को पराजित किए। 3 करोड़ जवन सेना लेकर के काल जवन भी यहाँ आया और उन्हें मुचुकुंद महाराज के द्वारा सब को भस्मीभूत करा दिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी पर भी, यहाँ मथुरापुरी में भी लीलाएं करते हुए असुर संहार आदि भूभार हरण आदि लीलाएं की और ऐश्वर्य भाव को प्रकट किया। इसके पश्चात समस्त जदुवंशियों को साथ में उठा करके द्वारका में बसा दी और द्वारका की लीलाएं हैं। आगे चलकर के और सारी कथाएं होंगी, मैं अपना वक्तव्य यही रखता हूँ।
Translate in brief.
Krishna Krishna Vatya Jagratya Namo. So briefly, Pujapati Maharaj is talking about the appearance of Sri Krishna and Mathura Mata. So, over the earth burdened by the weight of so many asuras, the earth planet approached Lord Rama for relief. So Lord Rama, headed by all the demigods, went to Prabhupada Vaikuntha and offered prayers to the feet of Kiridaksai Vishnu. Lord Vishnu, a voice came to the heart of Lord Rama. Soon my Prabhu, the Supreme Lord Sri Krishna, Swayambharavan, he will appear here in Mathura Mandal. Therefore, all you devas should take birth here in the Yadu Bonds, in the Yadu dynasty, to assist the pastimes of Sri Krishna. So, you know everything already. The 6 sons of Devaki were killed by Kams Maharaj. The 7th son, in Bhagavatam, described to be a miscarriage. But that was actually Sanghasan Ram transferring himself to the womb of Rohini in Vrindavan, and finally came the appearance of the eighth son of Devaki, Krishna himself. 10 months he stayed in the womb of Devaki, and there he appeared in the prison house of Kamsmara. All the demigods came to that place today and were offering prayers to Krishna in the womb. Satya, Vratam, Satya, Paramtri, Satyam. They offered many, many prayers. So when the time came for the appearance of Sri Krishna, he appeared in a four-armed form. With on his head he had helmet, a nice Vajanti mala of lotuses around his neck. On his body he was wearing many armors, bracelets. He was covered by Pitambara. On his feet he had Nupur. He appeared as a 16-year-old youth, ever fresh, more attractive than millions of cupids, with a very, very dark complexion. In that four-armed form he held Sankachakra Garapadma, lotus, Sudarshan disc, conch shell and club. That time, very interesting thing. In Dwarka there is the complete predominance of the mood of opulence, and the mood of sweetness is quite covered in Dwarka. But here in Mathura, the mood of sweetness and the mood of opulence is 50-50, equal, in equal proportion. Therefore the prayers of Devaki and Vasudev reflect that. They pray many things. You are the Supreme Purusham Pratikiparam. You are the Supreme Lord who is beyond material nature. Out of your mercy you have appeared here. They offered many, many prayers. But then alongside the prayers of opulence, they said, but we are also afraid because Kamsa has killed the 6 previous sons. Therefore, if you stay here, it's very dangerous for you. We are afraid like this. So their prayers reflect the mood of opulence and the mood of sweetness, both. Therefore they prayed, O Bhagavan, please conceal your form. Therefore Haribans described that the Supreme Lord came in prakrit tissue, like an ordinary baby form. Then Bhagavan ordered, O Vasudev Maharaj, take me there to Gokul. So Vasudev Maharaj, he took baby Krishna on his head and crossed the Yamuna here. Maharaj, I could not catch everything. So there are some conflicting arguments. What happened? One jackal was going across first to show Vasudev Maharaj the water here is very shallow. That jackal was Sankarshan. Therefore, the jackal, was Yogamaya Devi. So some people say the water of Yamuna rose to touch the feet of Krishna. But Pujabhati Maharaj saying in this there is not complete conception, because Kalindi, she serves in the mood of Madhuri Ras. And there Vasudev Maharaj, he serves in the mood of Vatsalya Ras. Therefore there may be some conflict. Therefore other Swamis have described, that Krishna disappeared in the Yamuna there.
No.
He, उन्होंने अपना पैर थोड़ा सा नीचे लटका दिया और जमुना की उस पैर को छू करके
नीचे चली गई।
कृष्ण ने जंप नहीं किया, पैर लटका दिया।
So then Krishna put his feet and touched the Yamuna, and the Yamuna was satisfied and came down. So Krishna had previously ordered Yogamaya to take birth there in Vrindavan as my smaller sister. So when Vasudev Maharaj went there, Yashoda could not understand she had given birth to two
वहाँ पर एक विचार बतलाया, वहीं से मथुरेश कृष्णा वासुदेव नंदन returned back to Mathura. And Prajesh, Yashodanandan, Nandanandan, वहीं से आ करके वहाँ पर गए।
Yes. So the idea is, from there, in the middle of the Yamuna, Mathuresh Krishna returned from there, back to Mathura, and Vrindavanandan came and back.
So,
that time, Mathuresh Krishna returned back here to Mathura, and Vrindavanandan Krishna was there, manifested from that time. So comes Maharaj, he had been waiting a long time. He had been completely thinking of Krishna in the mood of fear. actually comes as one of the first persons to know that Krishna would appear in this world. So since before the appearance of Krishna, he had been too much thinking of Krishna, the root of fear. Bhagavatam describes, he used to see the form of Krishna, Bhagavan Vishnu, with the Sudarshan chakra in his hand, everywhere. Therefore, 10 months, first the seventh child he was waiting so many years. Then when he heard that the child was crying, he came down. Vasudev Maharaj had returned with Yogamaya on his head and the rest of the leela that is manifested here. So the main point being, here in Mathura, there is some mood of opulence mixed with the mood of Madhurya. There is some feeling of sankochpa, meaning some feeling of shyness, some feeling of restriction, a little bit lacking of mamata, some hesitation in the free flowing of emotion, because the mood of opulence is present here in Mathura. But in the mood in Vrindavan, there is that mood of opulence is completely covered by the mood of sweetness. There the Vrindavatis have no sankochpa, no feeling of hesitation towards Krishna. Therefore, two types of bhakti, samaram bhakti and samaram bhava bhakti and vishram bhava bhakti. Samaram bhava means with hesitation, with some fear, and vishram bhava means no hesitation, complete seva and mamata.
Can you speak something on Krishna Janma?
The assembled Vaishnavas have requested and suggested that we speak a little from Bhagavad Gita. Because we're hearing some of the intimate details, some of the secret elements of the pastimes of Krishna, but in Bhagavad Gita, and for the purposes of explaining this pastime and this leela to the people in general, for the wider audience we're attempting to introduce to this path of bhakti, they must first come to understand Krishna's description of his own birth and purpose for appearance from Bhagavad Gita. And in the fourth chapter, Krishna explains very clearly his general mission. Bhaktaritraya sarvam vinashaya cha dushkatam gava samstapanakaya sambhavami udayate. I'd like to know, out of everybody here, how many of you are reading any part of the Gita and preaching to people about Krishna from this particular verse? Is anybody here preaching? Does anybody here sell books or preach? Huh? Raise your hands. I know Damodar Maharaj is. Some of the boys here. Anybody? Okay, one thing. We are here. Is revealing to all of us. Wait! Hare Krishna, Hare Krishna! Gurudev is revealing to all of us very special and secret aspects of the tattva, Krishna tattva, specifically his appearance. We've been hearing this from Sri Bhaktivinoda Maharaj. But for us, and for exposing the people in general, before they can understand any of this, they have to understand the basic Janma Karma Chamedhya in the old Vedic Tatrava. Krishna says in the fourth chapter of Bhagavad Gita that one first must understand the transcendental nature of my birth and my activity. This is key. Why? Why is it so important? Well, last night we were hearing about the teachings of Bhattacharya and how his mission and the mission of our other Sampradaya was to defeat the conception of Mayavad. The Mayavad stands firmly on the platform, on the foundation of thinking that Krishna's pastimes, Krishna's birth, Krishna's body and appearance, activities are all mundane and material. Yes, Krishna may have been a very great historical personality, but he's still a material personality.
they have no conception of the transcendent nature of Krishna and his pastimes. So, when we read these, first of all, these bhaktas, we could almost call them mana bhaktas or Bhagavad Gita, these will reveal to us in theory and basic textual form that whatever Krishna is saying, whatever he's describing, this is transcendental. Paratattva, higher lila, higher lila. And if you want to understand and gain strength and appreciation for the higher lila, you must first become fixed with Shraddha in this basic premise. So, when I asked before, how many of you have read Gita, how many of you are preaching, how many of you would like to do it? You're not doing it now, I guess. But without this, without this preaching activity, you won't be able to enter into this lila appropriately. And why not? How do we enter into Krishna lila? Well, you cannot approach Krishna lila, understand Krishna, except through the grace of Mahaprabhu. And Mahaprabhu, you can't approach him without gaining the grace of Nityananda Prabhu. And Nityananda Prabhu represents full Guru Tattva. Without him, without the principle of Guru, and without serving one's Guru, all of this becomes a mystery. And the purpose and of Krishna's appearance, as explained in Chaitanya Charitamrita, was to demonstrate to the entire world the beauty, the attraction, the unparalleled sweetness of the pastimes of Krishna in his Braj Lila, in his full original form as Shyama Sundar, Vrajendranandana, Nandanandana, Jashodanandana. And Mahaprabhu came to reveal that and to offer us this same mode of Braj praying. But Mahaprabhu exhibited the pastime of preaching, of teaching this to everyone, of attempting to liberate the souls. And he gave that order to his most confidential servants, headed by Nityananda Prabhu, to take that path up. And our Sampradaya has taken this mood on as its heart and soul. And our principal, our great acharyas, have all manifested this Manavishta, this intense inner mood and desire to preach and spread this understanding out of compassion. Because they are tathagatic with the mood of Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, I was told to speak some about Krishna Lila, but Mahaprabhu and Krishna Lila are the same. And this is my really interesting. Thank you.
गीता में कहा गया है जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सीजाम परित्रणाय विनाशाय च दुष्कृताम बट यू शुड नो, आप लोगों को जानना चाहिए, ये काम तो महाविष्णु भी कर सकते थे. दैट
जॉब
इट कैन बी डन बाय विष्णु महाविष्णु. सो दिस इज नॉट रियल कॉज, यू शुड नो. इसलिए भगवान के अवतार का कृष्ण का कारण ये नहीं, ये तो विष्णु के द्वारा भी करा सकते थे. चूंकि उसी समय में अवतार का भी भूभार का भी आया, किंतु कृष्ण ने असुरों का संहार नहीं किया, जरासंध को नहीं मारा या मरवाया, कालजवन को वो नहीं कराया,
ये सब काम महाविष्णु के द्वारा ही संभव हो सकता था। कृष्ण ने जो कंस को मारा, कृष्ण ने नहीं मारा, उनके भीतर में जो विष्णु तत्व है उसने मारा। अंडरस्टैंड? कृष्ण किल्ड रावण, अघासुर, बकासुर एंड अदर्स। कृष्ण डज नॉट टच देम, उनको उनके अंदर में जो विष्णु थे उन्होंने मारा। और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, रस का आस्वादन किया, 12 रसों का आस्वादन, दास्य सख्य वात्सल्य मधु रस का। विशेष करके रासलीला सर्वोत्तम लीला, लीलाओं में शिरोमणि, उसके लिए जगत में प्रकट हुए। अष्टकाली लीला गोलोक वृंदावन में, उसको जगत में प्रकाश करने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्ण अवतरित हुए। इसलिए असुर संहार इत्यादि कृष्ण का वास्तविक नहीं, बल्कि वो बाह्य कारण इत्यादि सबके रूप में ग्रहण करो। इसको स्पष्ट करने के लिए बतलाया, नारद जी व्यास जी के पास आए, सब कुछ उन्होंने लिखा, वेदों का विभाग किया, पुराणों को प्रकाश किया, महाभारत को प्रकाश किया, उसमें गीता उपनिषद भी आया, किंतु मन प्रसन्न नहीं। और नारद जी ने पूछा, तुमने सब कुछ किया, मन खिन्न क्यों, वाई यू आर अनसेटिस्फाइड। तो उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं जानता हूं, आप गुरु हैं, आप ही जानते हैं, आप तो वैद्य हैं। उन्होंने कहा, तुमने धर्म अर्थ काम का जैसा वर्णन किया है मोक्ष का, वैसे कृष्ण ही स्वयं भगवान है ये नहीं। यशोदा मैया जिसका आर पार नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, भीतर बाहर नहीं है, उसको बांध दिया प्रेम से, कहीं वर्णन नहीं किया तुमने। गोपियों के चरणों में गिर गए, अपने मुकुट और बंसी रख दी, न पारे हम निर्वध्य सनी, ये किया नहीं। इन श्रीलाओं को भक्ति योग के द्वारा समाधि में देख करके उसको लिखो, तब तुम्हारा चित्त प्रसन्न होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंत में कहा गया है, देवकी जन्म वादो जदुबरपति, जयति जन निवासो देवकी जन्म वादो जदुबर परिषदर्म त्रिचर ब्रिज नग्न सुस्मित सी मुखेन ब्रजकुल बलितानां वर्धयन कामदेव। कृष्ण का अवतार का कारण ये है और उतरने का, वर्धयन कामदेव, गोपी कंदर में निर्मल प्रेम को प्रकट करके जगत को शिक्षा देने के लिए कृष्ण। देवकी जन्म बाद, देवकी के यहाँ जन्म लिया ये बाद है, यशोदा जी का गर्भ से वो पूर्ण रूप से निकले और अपने बाहुओं से भीम और अर्जुन इत्यादि के द्वारा असुरों का संहार किया, सखाओं के साथ में गोचारण के लिए गए और गोपियों के काम को वर्धन किया। इसमें सारा संपूर्ण श्रीमद् भागवत इसी इसी श्लोक में आ जाता है। समस्त होल श्रीमद् भागवत इज इन दिस वन श्लोक। सुखदेव गोस्वामी हैज टोल्ड लाइक दिस गौर प्रमाण।
स्वयं आस्वादन किए ना विष्णु तत्व ने, आस्वादन किए राक्षसों को।
when Krishna describes to Arjuna, oh Arjuna, I come in every age, really unto you again, again. I come in every age to protect religion and to destroy irreligion, to protect the sadhus. For this reason I descend. Guru is giving nice points. That these are only external reasons for Krishna's appearance. You should not consider these to be the main things. In Sri Chaitanya Charitamrita describes that actually Krishna never killed Kamsa, Krishna never killed Putana, Agasura, Bhakasura. Vishnu inside Krishna, he performs the works of killing demons, protecting religion, protecting the sadhus. All these external activities are the work of Mahavishnu, the Yuga Avatar. These are not the duties of the original personality of Godhead, Brijana Nandan, Shyam Sundar. This understanding is given clearly in the Srimad Bhagavatam. That Sri Vyasadeva, despite compiling all the Vedas, including Bhagavad Gita, in the Mahabharata, he was still not satisfied until Guru Narada Muni came. Then he said, oh Vyas, you have done so much, but you are not satisfied. Why? Have you described how Krishna has no inside, no outside, no beginning, no middle or end, but Yasoda Mata has bound him out of her prem? Have you described that in your Mahabharata? No, Gurudev, I have not described. Have you described how Krishna is completely controlled by the prem of the gopis? He puts his flute and his peacock feather at the feet of the gopis and prays Nampare Ham Nidavidya Samvidam. Have you described that in your Mahabharata? No, Gurudev, I haven't described anything. Then Narada Muni blessed him in his samadhi, bhakti yoga in the manasa, samyak pranaka amale. In his samadhi trance, then Vyasadeva saw the pastimes of Krishna. Therefore, Krishna has appeared in this world primarily to taste lust and to give shiksha to this world what is prema bhakti. But these external things like establishing religion, this is done by Mahavishnu inside Krishna. Therefore, the whole, like putting the ocean inside a bottle, Sri Sukadeva Goswami has given the whole Srimad Bhagavatam in one verse. Jayati Janani Vaso Janana Devaki Janma Bhagavatam. Therefore, the idea that Krishna has appeared as the son of Devaki and Mathura, this is a Bhargava. This means, Sukadeva Goswami says, this is only a theory because Krishna really has appeared in Vrindavan. He comes here with his two arms like Arjuna and Bhimsen to destroy the demons. Janani Janani Vaso. He resides in all the hearts of his devotees, especially the Vrijavasis, and he manifests his prema lila. By hearing this, then Cupid can be defeated. So these are the real reasons of Krishna's incarnation, to taste this prema ras.
One very sad news, that the one of the prominent disciple of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Sripad Bhakti Sarup Damodar Maharaj, he has left his body by attack of bomb in Manipur. He was injured, and just tomorrow and yesterday,
he was okay. But yesterday he left his body.
Yesterday he left his body. Now his body is bring. Yes. They will bring to Radha Kund and they will give Samadhi. He was really a Vaishnava. In his home, I have seen Gaur Govinda Maharaj. And secondly, they were real Vaishnava. They used to follow the principles of their guru in real sense. They never admitted what now ISKCON is
propagating.
And he was my bosom friend. He was very humble, very humble. Very humble. And he has told his disciples, you can associate with Narayan Maharaj, he is your Vaishnava.
Oh. Last year, he came to you in Govardhan last year in Kartik.
Uh-huh. In Kartik, he met me in Govardhan last year.
Navadip
in Navadip also. whenever I used to go to Navadvip, he used to meet me. And helping me, I also used to help him. So we have lost one very good devotee. I pray Krishna, Mahaprabhu, that he should have blessing on him, that his pure bhakti should come in his heart, wherever he is. He is not dead, his soul never will die. So Krishna should be merciful, sting to his mercy. Gaur Premanand.